ये आश्रम शब्द अंग्रेजी में शील प्रोपात शेल्टर यथा आश्रम अनुवाद किया आश्रम आश्रम पहला अक्षर एक ही है आश अश्व अश्रम अश्रम आश्रम श्रम आश्रम द्वादश तो आश्रम क्या है आश्रम है एक कुटी या वहां में एक गुहा या कोई भी बिल्डिंग जिसमें लोग जो वहां पर रहते हैं भौतिक यातना से आश्रय लेते हैं और श्रम करते हैं किसी प्रकार श्रम करते हैं आध्यात्मिक प्रगति में। तो आश्रम का मतलब नहीं है एक अच्छा बंदोबस्त खाना पीना सोने के लिए। आश्रम का मतलब अच्छा बंदोबस्त कृष्ण के और जाने के लिए। तो ऐसे बहुत बिल्डिंग है जैसे कि ब्रह्मचारी आश्रम है ये ब्रह्मचारी आश्रम है और वहां में बिल्डिंग भी है अपार्टमेंट ब्लॉक दूसरे मकान जिसमें लोग रहते हैं ब्रह्मचारी आश्रम और कोई भी अपार्टमेंट ब्लॉक नहीं भी तो एक ही प्रकार के बंदोबस्त होते कुछ रसोई का बंदोबस्त वो मुख्य है और धूप और बारिश से उच्छाक है दयाव है आश्रय जाने के लिए और दयाव है द्वारबाज्य है और थाला लगाना भी है चोर लोग से बचाने के लिए। तो ब्रह्मचारी आश्रम में भी और वहां के अनाश्रम में भी है और क्या है और सायन के लिए कुछ बंदोबस्त है ब्रह्मचारियों के लिए क्या बंदोबस्त है तो पलंग का जरूर नहीं है इच्छता ही काफी और पंखा भी है और खड़े एसी भी है तो ये सब लाइट ये सब बंदोबस्त है। तो ब्रह्मचारी आश्रम और कोई साधारण मकान में क्या फर्क है तो फर्क ये है कि साधारण मकान में निवास स्थान तो लोग रहते हैं जिससे आहार निद्रा भय मैथिलन खाना पीना सोना भय लगना मैथुन करना जो ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं होते लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में आहार और निद्रा और राजा है भाई भाई से प्रॉपर अंग्रेजी में ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग भाई का भाई से क्या होते अपने रक्षा करना उसका मतलब लड़ाई। तो सभी देश में वो मिनिस्ट्री क्या बोलते हैं मंत्रणा मिनिस्ट्री मंत्रणा डिफेंस मिनिस्ट्री ऐसे बोलते रक्षा सुरक्षा की मिनिस्ट्री और उसका मतलब दूसरों को आक्रमण लड़ाई करना। तो ब्रह्मचारी आश्रम में लड़ाई करना झगड़ा ये सब नहीं होना चाहिए और मैथुन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो करीब तो पूर्व काल की विधि के अनुसार ब्रह्मचारी है तो कभी कभी कुछ जागर करते, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो सकता। मैथुन तो सख्त मना, तो आश्रम में आहार निद्रा ये सब के लिए बंदोबस्त होते हैं, लेकिन जो बाहर रहते हैं, बाहर रहने वाले के जीवन का क्या उद्देश्य है? एक्चुअली अगर हम लोगों से पूछेंगे उद्देश्य जीवन का, उद्देश्य उद्देश्य कभी नहीं सोचते उद्देश्य क्या है। हम इधर ही हैं और हम काम करते हैं और जैसे तैसे हम कुछ पैसा लेके करते फिरते सिनेमा जाते टीवी देखते, जीवन का उद्देश्य क्या
है?
कोई उद्देश्य नहीं, कभी नहीं सोचते कि जीवन का उद्देश्य। और अगर हम पूछेंगे तो सोच के करें जवाब देंगे कि जीवन का उद्देश्य यही है पैसा लाना और टीवी देखना खाना पीना सोना। तो ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्म परम सत्य का अन्वेषण करना है। ब्रह्मचारी का मतलब नहीं है दिशाहीन साधारण लोचन, ब्रह्मचारी का मतलब अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञास, जो इसी प्रश्न करते हैं परम सत्य क्या है और वो परम सत्य को अन्वेषण करने और परम सत्य की आराधना करने के लिए आश्रम में रहते हैं, एक मतलब दूसरे ब्रह्मचारी के साथ रहते हैं, तो वो ब्रह्मचारी आश्रम का है। आश्रम ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्मचारी की इति ब्रह्मचारी, जो संपूर्ण ब्रह्म मतलब सत्परम सत्य के वातावरण में रहते हैं। और इसका मतलब नहीं है खाली शरीर ब्रह्मचारी जैसे थकला है चोटी है चीला लगाना है दरवा कपड़ा पहनना है, तो यही सबों से ही तो ब्रह्मचार्य नहीं होते। ब्रह्मचार्य एक्चुअली मानस है, इसलिए गृहस्थी भी ब्रह्मचार्य हो सकते, ब्रह्मचारी हो सकते गृहस्थ ब्रह्मचारी। गृहस्थ ब्रह्मचारी का मतलब जो गृह में रहते हैं लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि चेतना शुद्ध है और गृहस्थ आश्रम में रहते हैं परम सत्य अर्थात कृष्ण की आराधना करने के लिए। लेकिन ब्रह्मचारी गृहस्थ नहीं होने चाहिए, जो ब्रह्मचारी है लेकिन बुद्धि गृहस्थम गृह में दी जा सकती, तो ब्रह्मचारी आश्रम का मतलब जो जिसमें सब ब्रह्मचारी रहते हैं, तो इनके एक ही उद्देश्य है परम सत्य की सेवा करना। तो ऐसे जगह लोगों को आश्रय दे सकते, आश्रय किस प्रकार का आश्रय, तो सभी मकान में आश्रय में हो जाते, तो ऐसा लगते दिल्ली में ऐसे जगह है हॉस्टल, इसमें एक कमरा में 50 गांव के वाले रहते हैं, ऐसे होते हैं नहीं डॉर्मेट्री सस्ता होटल होते, तो सब महीना में 300 रुपया देते हैं, तो ऐसे आश्रय में होते 300 रुपया महीना में कुछ आश्रय में हो सकते, अर्थात धूप से बारिश से चौड़ों से कुछ आश्रम आश्रय मिल सकते। लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम का मतलब खाली छात और दयाओ से शारीरिक आश्रय प्राप्त करना, ब्रह्मचारी आश्रम का मतलब आध्यात्मिक आश्रय प्राप्त करना, क्योंकि इस भौतिक जगत में सदैव पदम पदम यदि पदम नतेशम दुखालयम अशाश्वतम सदैव हा क्षण हम अनाश्रित रहते, हमारे कोई आश्रय नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं ईश्वर हम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, तो हम ईश्वर नहीं है, भोगी नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं भगवान का पद, खुद को नकली भगवान बनाना और भगवान का पद लेना, लेकिन हम इसलिए अधिकृत नहीं है, हम भगवान नहीं हो सकते। भगवान कौन है जो सबको आश्रय देते हैं, और हमारे हमारी स्वाभाविक स्थिति है भगवान के चरण चयन के आश्रय में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण छाया के आश्रय उपेक्षा करके हम इस भौतिक जगत में आते, तो हम अनाश्रित, और इसलिए क्योंकि हम आश्रय नहीं मिलते, इसलिए हम सदैव भाई भयभीत होते। भयम द्वितीय विनिवेश विषाद विपायी, तो वास्तविक स्वभाव हमारे है कि मैं कृष्णदास हूं, लेकिन कि हम कृष्ण के किंकर है, ज्ञान भूत इस भौतिक जागर में आए हैं, और विपरीत बुद्धि होती कि मैं भगवान का दास नहीं हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, और अगर कोई दूसरे व्यक्ति है कृष्ण जो मानते हैं वो भगवान है, वो भूल करते, अगर कोई कृष्ण हो कृष्ण भी मेरा दास, तो ये विपरीत बुद्धि, मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, मैं कृष्ण के प्रभु हूं, मैं सबके प्रभु हूं, लेकिन वास्तव में हमारे कोई बल नहीं है भगवान होने के लिए, कोई बल नहीं है दूसरों को आश्रय देने के लिए, इसलिए रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण को ऐसे मंतव्य किए कि जो नारी सोचते हैं कि मेरा पति मेरा आश्रय है भूल करते, क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई दूसरों को आश्रय नहीं दे सकते, क्योंकि इस भौतिक स्थिति ऐसे है कि मृत्यु आवश्यक है, और मृत्यु काल में कोई हमको आश्रय नहीं दे सकते। अगर हम सोचते हैं कि मेरे पास काफी पैसे है, और अगर हार्ट अटैक हो तो कोई समस्या नहीं है, तो अपोलो हॉस्पिटल जाऊंगा, और वहां पर काफी डॉक्टर है, और सब दुनिया के सब श्रेष्ठ डॉक्टर बुला के तो मुझको बचाएंगे, तो संभव नहीं होगा। जब हमारे समय आते है तब जाना पड़ेगा, और सभी डॉक्टर को कौ कौ रुपये दे के कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए इस समझना चाहिए कि जगत में इस जगत में हमारे कोई आश्रय नहीं है, इस शरीर भी हमको आश्रय नहीं देते, हम सोचते ये शरीर नहीं हो, लेकिन ये शरीर क्या है, ये शरीरम व्याधि मंदिरम, हम खुद का शरीर में आश्रय लेते, लेकिन क्या होते खस बुढ़ापा में शरीर से खाली कष्ट कष्ट कष्ट, हर क्षण दाद हो, पीठ में पेट में सिर में कुछ नहीं खा सकते, सब कुछ जो खाते उसका अच्छा नहीं होते, ऐसा कोई आश्रय नहीं है इस भौतिक जगत में, तो इसलिए भगवान के चरण में आश्रय लेना चाहिए, और इसलिए आश्रम जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि इतने विपरीत हो गए कि हम नहीं समझते कैसे भगवान के चरण में आश्रय लेना। एक्चुअली हम जीव है और हमारे स्वाभाविक संबंध है श्री कृष्ण के साथ, लेकिन उसको इतने सब भूल किया था जो हम नहीं जानते कैसे भगवान के चरण में शरण लेना, तो एक ರೋಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಅನ್ಈಸಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಮೈ ಕೋಯಿ ಶಬ್ದ ನೀ ಅನ್ಈಸಿ ಜಿಮೆ ಸಬ್ ಕುಚ ಬೋ ಕನ್ನ ಐಸ ಹೋತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈ ಬಾದ ಅಗರ ಸೇರ್ ಲಗಾನ ಹೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇ ತೋ ಐಸ ಇಟ್ ಓ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತಲಬ ಚೇತನ ಹೋನೆ ಕೆ ಜಬ್ ಫಿರ್ ಚೇತನ ವಾಪಸ್ ಆತೆ ಹೈ ತೋ ಕುಚ ಭಿ ನಹೀ ಜಾನತೆ ಮೇಕಪ್ ಮೇರಾ ನಾಮ ಕ್ಯಾ ಹೈ ನಹೀ ಜಾನತೆ ತೋ ಅಗರ ಉಸ್ಕಿ ಪತ್ನಿ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಆಯೇಗಿ ತೋ ಕೌನ್ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಪಹಚಾನ ನಹೀ ಕೇ ವೋ ಅನ್ಈಸಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ತೋ ಸಬ್ ಕುಚ ಬೋಲ್ ಕರ್ತೆ ತೋ ಐ ಹಮ್ ಐಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಹೀ ಹೈ ಇಸ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಹಮ್ ನಹೀ ಜಾನತೆ ಹಮಾರೆ ಆಶ್ರಯ ದಾತಾ ಕೌನ್ ಹೈ ಕೃಷ್ಣ ಹಮಾರೆ ಸಬ್ಸೆ ಬಡ ಮಿತ್ರ ಹೈ ಕೃಷ್ಣ 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 ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ತೋ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಈ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಲನ್ನ ಚಾಹಿಯೇ ಜೈಸೆ ಕಿ ಹಮ್ ಫಿಯರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಕೃಷ್ಣ ಜೋ ಹಮಾರೆ ಸಬ್ಸೆ ಬಡೆ ಮಿತ್ರ ಹೈ ಔರ್ ಜೋ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಹೃದಯ ಮೇ ಹರ ಜೀವನ ಮೇ ರಹತೆ ಹೈ ತೋ ಕೃಷ್ಣ ಸದೈವ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪ ಮೇ ಹಮ್ ಹಮಾರೆ ತರಫ ದೇಖತೆ ಹೈ ಔರ್ ಹಮಕೋ ಆಶ್ರಯ ದೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತಯಾರ್ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಹಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ತರಫ ಕಭಿ ನಹೀ ದೇಖತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಭೂಲ್ ಕಿಯೆ ತೋ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಲೆನ್ನ ಚಾಹಿ ಜೈಸೆ ಕಿ ಹಮ್ ಫಿರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಸ್ನಾನ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕತೆ ಈ ಆಶ್ರಮ ಕಾ ಉದ್ದೇಶ ಹೈ ತೋ ಅನ್ಈಸಿ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೋತೆ ಹೈ ತೋ ವೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊ ಸಬ್ ಕುಚ ಭೂಲ್ ಕಿಯೆ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಕಹನ್ನ ಚಾಹಿ ತುಮಹಾರಾ ನಾಮ ಯೀ ಹೈ ಯೀ ತುಮಹಾರಿ ಪತ್ನಿ ಹೈ ಯೀ ಆಪಕೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೈ ತೋ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಕಹನ್ನ ಚಾಹಿ ತೋ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಪುನಃ ಸ್ಮರಣ ಹೋ ಓ ಮೇರಿ ಪತ್ನಿ ಹೈ ಸಹಿ ಹೈ ಯೀ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚೆ ಸಹಿ ಹೈ ಓಹೋ ಅಭಿ ಯಾದ ವಾಪಸ್ ಆಯ ಹೈ ಔರ್ ಅಚ್ಚಾ ಹೈ ವೋ ಪೇಷಂಟ್ ಉಸ್ಕೆ ಮಥಾನ ವಾಪಸ್ ಲಾನೆ ಔರ್ ಸಬ್ ದಸ್ ಕೇ ಜೋ ಜಾನತೆ ಹೈ ಅಚ್ಛೀ ತರಹ ತೋ ವೋ ಐಸೆ ಬತಾ ಬದಲ್ನ ರಖನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಜೈಸೆ ಕಿ ತುರಂತ ಉಸ್ಕಿ ಪುನಃ ಸ್ಮೃತಿ ಆ ಜಾಯೆ ತೋ ವೈಸೆ ಹೈ ಹಮ್ ಅಭಿ ಇಸ್ ಭೌತಿಕ ವಾತಾವರಣ ಮೇ ಹೈ ಜಿಸ್ಮೇ ವೋ ಪೂರ್ ಪೂರಾ ಪ್ರಚಾರ ಹೈ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಭೂಲ್ ಕರ ತೋ ವೈಸೆ ಪ್ರಚಾರ ನಹೀ ಹೈ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಆಗರ್ ಬೋಲ್ ನಾ ಹೈ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಭೂಲ್ ಕರ ತೋ ಕೃಷ್ಣ ವೋ ನಾಮ ಆತೆ ಕಿ ಹಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಯಾದ ಕರೇ ತೋ ಕೃಷ್ಣೇ ತರ ವೋ ಶಬ್ದ ಹೈ ಭಾಗವತ ಮೇ ಆತೆ ಕೃಷ್ಣೇ ತರ ಇಸ್ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೇ ಅಲಾವಾ ಸಬ್ ದೂಸರೆ ವಸ್ತು ಇಸ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಮೇ ಭೌತಿಕ ವಾತಾವರಣ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ತರ ಪ್ರಚಾರ ಹೋತೆ ಸಬ್ ಕುಚ ಜಿಸ್ಕಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧ ನಹೀ ಹೈ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮತಲಬ್ ಸಬ್ ಮಾಯಿಕ ವಸ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಕರ್ನೆ ಹೈ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಪಿಲೊ ಸರ್ ಸೋಪ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕರೋ ಫಿರ್ ತುಮಹಾರಾ ಜೀವನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆನಂದಮಯ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಯಹಿ ಸಭಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಾಧಾನ ಸರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಖಿಲ್ ಖಾವ್ ಫಿಯರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸೀಮ ಆನಂದ ಆಯ್ಗ ಐಸೆ ಘೋಷಣೆ ಹೋಗಿ ಟಿ ವಿ ಹಮ್ ಇನ್ನ ಬಡ ಮರ್ಕಿ ಹಮ್ ಸರ್ ಟಿವಿ ಮೇ ಐಸೆ ಘೋಷಣಾ ಆತೆ ಲಗತೆ ಸಹಿ ಹೈ ತೋ ಹಮ್ ಇತನೆ ಬಡ ಮರ್ಕೆ ಕಿ ಹಮ್ ಐಸೆ ಪಚಾರ ಮೇ ಸಬ್ ಬೋಲ್ ಕಾಮ ಕರೋ ಕಾಮ ಕರೋ ಕಾಮ ಕರೋ ಜಾದಾ ಕಾಮ ಕರೋ ಫಿರ್ ಸುಖಿ ಬನ್ ಜಾಯಿ ಅಚ್ಛಾ ಜಾಬ್ ಮೇ ಲೋ ಅಮೇರಿಕಾ ಜಾಓ ತೋ ಐಸೆ ಪಚಾರ ಹಮ್ ಸೇ कि ऐसे हम सुखी होंगे। ये क्या है, पश्यन अपि न पश्यत। हम देखते हैं कि दूसरे गधा जैसे काम करते हैं, और लोग आजकल लोग इतने सा मेहनत करते हैं कि गधा भी खिलाफ करें अगर उसको उतने सा काम देने हैं। और सब देखते हैं कि ऐसे जीवन व्यतीत करने से कोई सुखी नहीं है, सबका टेंशन होते है, हार्ट अटैक होते हैं, दो बार डिवोर्स करते हैं, तो कोई सुखी नहीं है कि बहुत पैसे में संचय करते हैं कि फिर उसके बाद खुद की पत्नी उसको चीटिंग करते हैं, दूसरे आदमी के साथ भाग जाते हैं सब फैसले, तो यही सब होते हैं। तो सब देखते हैं कि कोई इसी अवस्था में सुखी नहीं है, लेकिन हम सोचते कि नहीं सुखी है। यही सुख प्राप्त करने का उपाय है, काम करना, पैसा लेना, पार्टी जाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, इसमें क्या सुख है? सिगरेट वो पैकेट में लेके तो इससे ही तुम मार जो, ठीक है, तो कितने बड़ा मूर्ख है। तो पैकेट में ऐसा लेके स्मोकिंग कॉजेज सीरियस डिजीजेस, स्मोकिंग करने से क्या बोलते हैं सीरियस डिजीज, कैंसर, कैंसर होगा, बहुत प्रकार के बीमारी, फिर भी लोग खरीद लेते हैं, अच्छा है। तो लोग इतने बड़े मूर्ख होते, देख फसन अपनी ना फसन, देखते कि कोई सुखी नहीं है, फिर एक ही रास्ते में जाए। तो आश्रम है जिसमें वातावरण बिल्कुल पृथक, जिसमें हम पार्टी नहीं जाते, पार्टी हम लौट जाते, मतलब यही कीर्तन पर नाचना है, गाना है, आनंद होते आध्यात्मिक पार्टी होती। पार्टी का क्या मतलब, तो दोस्तों के साथ नाचना, तो हम ऐसे करते ये अच्छा पार्टी। आश्रम का मतलब जिसमें वातावरण थोड़ा आध्यात्मिक होते, और जैसे बाहर के लोग बाहर में ऑफिस में घर में तो सब बकवास करते, और ऐसे बकवास बनने से तो बाबा बंधन और मजबूत होते। तो वैसे आश्रम में केवल कृष्ण कथा बोलनी चाहिए, और कथा जो कृष्ण सेवक के बारे में होती है, और उससे हम भवबंधन से मुक्त होते हैं और कृष्ण भक्ति में अग्रसर। तो ऐसे आश्रम में ऐसे वातावरण सृष्टि करने चाहिए। तो अगर आश्रम में ऐसे वातावरण नहीं है, कृष्ण भावनामय वातावरण नहीं होते, तो वास्तव में वो तो आश्रम नहीं है। तो खाली आश्रम का नाम है एक दुई है, और भागवत ने ऐसा लिखे कि इस खाली युग में सभी आश्रम तो साधारण गृह जैसे बन जाते, तो आश्रम का नाम है वो पेट का प्रॉब्लम उसका समाधान होते। तो ऐसे लोग सोचे कि उनके साथ काम करना कठिन है, और कैसे काम मिलेंगे, तो अच्छा हो साधु बन जाएंगे, तो अपने आप को पेट का प्रॉब्लम समाधित हो जाए। प्रभुपाद बोले कि मेरा बचपन में देखा था कि एक पड़ोसी हर रोज तो घर से निकल के गरवा कपड़ा पहन के तो रास्ते रास्ते में दुकान दुकान में पैसा मांगते थे, तो शाम को वापस घर घर वापस गए, और वो गरवा कपड़ा निकालते तो साधारण कपड़ा पहन लिया, और साथ नहीं कह पाए सब आज जितने समय है। और ऐसे ही बहुत आश्रम है जिसमें कोई आध्यात्मिक उसमें कोई रुचि नहीं है, करीब सुबह 6 बजे 7 बजे उठते हैं और कुछ आरती करते हैं और ये है हम साधु, और दिन में कुछ काम नहीं है, लोग आते हैं या कुछ पैसे देते हैं। प्रभुपाद भक्ति ज्ञान से सोचा था ऐसे बालों की ठाकुर जी को दिखाना, खाली पैसा संग्रह के लिए करने के लिए, तो ऐसे इतना खराब है कि उससे रास्ते में झाड़ू मारना अच्छा है। झाड़ू मारना तो झाड़ू मारने से मतलब कुछ काम करना है और उससे पैसा मिलते, लेकिन कुछ नाम कुछ काम नहीं करके खाली ठाकुर आओ आओ ठाकुर जी देखो, तो ऐसा है नहीं। तो जब नया बड़े मंदिर बनाना है तो उसके बाजू में छोटे छोटे मंदिर भी बनाना है, मुझे मालूम नहीं यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर है आसपास। ऐसा होते है कि लोग सोचते कि बड़ा मंदिर है बहुत आदमी आएंगे, तो अच्छा है हम इसके प्रवेश द्वार के सामने एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे और कुछ कुछ लोग भी यहाँ आएंगे तो हम कुछ कुछ पैसे मिलेंगे। ऐसे शालग्राम द्वारा बादाम भंग, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि शालग्राम लेके हम बादाम को बनते, तो ऐसी प्रवृत्ति ऐसी भावना है कि शालग्राम एक चीज है जो हम खुद की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे है हम कोई जॉब नहीं मिला और जॉब करने से बहुत तकलीफ होती, अच्छा हो साधु बन जाएगा। कभी कभी जवान हो मुझको ऐसे बोलते हैं कि अगर जॉब मिलूंगा तो ले लूंगा, अगर नहीं तो इस कमजोर इस कंक्लूजन। तो अच्छा है तो कम से कम चपाती मिलती, ऐसे नहीं। आश्रम का मतलब जिसमें पूरी कृष्ण भक्ति, पूरी कृष्ण भक्ति में प्रयास होनी चाहिए। तो एक शब्द है उड़िया भाषा में मठवा, मठवा का मतलब एकदम एलसीडी जो कुछ काम नहीं करते, मठवा का मतलब जो मठ में निवास करते, मठवा मठवा। तो ऐसे अगर कोई जवान घर में रहते और कुछ काम नहीं करते तो उसकी माँ उसको बताए तुम क्या मठवा हो, मठवा का मतलब कोई कुछ काम नहीं, शांति शांति शांति, ये हमारे मंत्र है ओम शांति शांति शांति। तो आज ज्यादा क्या हो गया, शांति शांति शांति, तो हज मौला मुझे मुझको दो। तो ये आश्रम का आश्रम आश्रम है आश्रय लेना है, लेकिन आ श्रम करना चाहिए, आ का मतलब ज्यादा ज्यादा श्रम करना चाहिए। साधारण कामों से ब्रह्मचारी का ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे उद्देश्य है कृष्ण प्राप्ति, और कृष्ण प्राप्ति इतना सहज नहीं है कि कल ही खाली ऐसे जप करने से कृष्ण प्राप्ति होती है। तो कृष्ण प्राप्ति कैसे संभव, आदर सदा तप सदे संगम था भजन क्रिया तथो नाचन वृत्ति से तथो निष्ठा विचिष्ट। तो ऐसे साधना भक्ति में प्रगति का क्रम होते, तो भजन क्रिया तो आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब एक्चुअली यही शुरू, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग और उसके बाद भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति करना। तो जब तक हमारी खाली थोड़ी सी श्रद्धा होती है और कभी कभी साधु समझते हैं तो वो कृष्ण भक्ति में प्रवेश करना है, लेकिन वास्तविक कृष्ण भक्ति का शुरू होते भजन क्रिया में। और उसमें क्या है, सुबह सुबह उठना, स्नान करना, मंगलारती जाना, माला करना, थोड़ा प्रसाद लाना, किस लिए, शरीर की पुष्टि के लिए, जैसे कि हम भगवान की शरीर भगवान की सेवा में लगा सकते, तो पूरे दिन में कृष्ण सेवा करनी चाहिए। तो भक्तों 4 बजे सुबह, 10 बजे रात तक और उसके ज्यादा भी हो सकते कृष्ण सेवा में व्यस्त है। तो कामी लोग इतने व्यस्त रहते हैं इंद्रिय सुख के लिए, तो भक्तों आव्यस्त रहना चाहिए कृष्ण सेवा। व्यस्त का मतलब इतना राजसिक होने में, लेकिन सदैव हमेशा कृष्ण सेवा में कुछ ना कुछ करनी चाहिए। हम एक्चुअली ऐसे होने चाहिए ब्रह्मचारियों के लिए, क्योंकि ब्रह्मचारी का मतलब जो छात्र है, तो ब्रह्मचारियों के लिए दिन में कम से कम 1-2 घंटे निकालने चाहिए शास्त्र अध्ययन करने के लिए और सेवा भी करने चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचार्य का मतलब जो गुरु के गुलाम है। आचरण दास वन नीचो गुरु सुहृद सौहृदम, ब्रह्मचारी गुरु को ले वासन जानतो गुरु, यही ब्रह्मचारी जीवन का वर्णन है। ब्रह्मचारी गुरु को ले वासन, ब्रह्मचारी का मतलब जो गुरु को गुरु का स्थान में निवास करते। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी है जो गृह में रहते हैं और काम करते हैं अभी तक विवाह नहीं की। ब्रह्मचारी का मतलब जो गुरु के स्थान में रहते हैं, गुरु के अधीन होते हैं। और वासन दांत मतलब गुरु से नियंत्रित होते हैं और इंद्रिय दमन करते। वासन दांत गुरु हितम, ब्रह्मचारी तो गुरु को में रहते हैं, किस लिए, गुरु के हित के, और सब प्रयास करते, सब सेवा करते गुरु के हित के, क्योंकि जब वो ब्रह्मचारी जानते हैं कि अगर मैं गुरु सेवा करता हूं तो इनकी कृपा से मैं ब्रह्म ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान मिल सकता। वासन दांत आचरण दास बन नीचे, ब्रह्मचारी तो एकदम नम्र होने चाहिए, मैं नीच दास हूं। तो चाहे भी राजा के पुत्र, चाहे भी उत्तम ब्राह्मण के पुत्र, चाहे भी स्वयं भगवान कृष्ण, जब गुरु के आश्रम में रहते हैं तो आचरण दास बन एकदम दास, दास का मतलब गुलाम जैसे, और गुरु सुदृढ़ सौहृदम, सुदृढ़ सौहृदम सहृद गुरु मुक्त पद वाक्य चित्त करना करिए मने, तो मेरे सब विशेषकर चिंतन और सभी प्रयास वचन कार्य सब कुछ गुरु श्री गुरु की इच्छा करने के लिए होना चाहिए। तो धृतराष्ट्र महाराज तो दीर्घ जीवन के बाद जिसमें धृतराष्ट्र की सभी आशा नष्ट हो गया है, तो अंत में प्रयास करते हैं आध्यात्मिक वातावरण में रहना और आध्यात्मिकता में प्रगत होना। तो जो जीवन के शुरू में अवसर मिलते हैं ब्रह्मचारी जीवन पालन करने, तो द्विजवासना और अवसर और भाग्यवान है। हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि इस अवसर मिल गए हैं। तो बचपन में ज्यादा ब्रह्मचारी जो आते हैं तो जवान है, बचपन में युग काल कृष्ण भक्ति करें, तो ये अवसर पूरी उत्साह के साथ लेना चाहिए। नहीं है कि अभी अवसर मिला कुछ काम नहीं करके फिर बस, ऐसा नहीं। अभी अवसर मिला श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, तो ये अवसर पूरी उत्साह के साथ लेना चाहिए। हरे कृष्ण।
तो इसके बारे में कई प्रश्न है, मंतव्य है।
डिफरेंस बिटवीन
वाइटल एनर्जी, उसका मतलब प्राण, संस्कृत में प्राण बोलते हैं। वाइटल एनर्जी, वेयर डिड यू रीड दिस, वेयर डिड यू टेक दिस टर्म फ्रॉम? ही इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइटल एनर्जी एंड आत्मा। वाइटल एनर्जी संस्कृत में प्राण बोलते हैं। Where did you read this term, vital energy? Where did you hear this term? From? From a book. Which book? From Prabhupada's book. So I presume then Prabhupada is using this term, vital energy, as translation for prana. Atma means the soul. Atma ka matlab jivatma. Jo भौतिक आठ कोश से भिन्न है। भूमि राम मनोवायो खम मनोबुद्धि हम काना इतिहास में बिना प्रकृति अष्टम। दिस ग्रोस मटेरियल एनर्जी इज कंप्राइज्ड ऑफ एट आइटम्स। सो द सोल इज सेपरेट फ्रॉम इट। द सोल इज अविनाशी टू तद्विति येन सर्वमिदं तथा। His body is made, his sharira, sthul or sukshma, thus don't say gatitva. Lekin atma jo sharira mein sarva vyapi hai, ye bhautik vastuon se bhinna hai. Everything in his body is temporary. But the soul is avinash, ye शरीर विनाशी, लेकिन आत्मा अविनाशी। सो दैट वाइटल एनर्जी मीन्स द प्राण। द प्राण इज द नेम फॉर द, इट्स वन काइंड ऑफ एयर, सटल एयर विद इन द बॉडी, इन विच द, इट्स कॉल्ड द लाइफ एयर। सो द दैट पर्वेड्स द होल बॉडी। So that appears to be non-different from the life of the body. As long as there's no prana in the body, then the body is dead. But actually the prana also depends upon the presence of the atma. So the atma is that which, the atma is that which, in the presence of which, the prana will also be present. As long as we're in the material atmosphere. But when we go to the spiritual atmosphere, the spiritual world, then there's no need of this material prana. No, the energy is not, the atma is not dependent upon the material energy. The material energy of the body is dependent upon the presence of the Atma. From Atma comes energy. Not that from energy comes Atma. Yes, as long as we're in this material body, the material ingredients, they require some energy also, some input of energy. But that cannot even be, just like the food you eat or the air we breathe, that cannot even be processed without the presence of the Atma. The difference between a living body and a dead body is the presence or absence of the soul, Atma. Now if the soul leaves the body, then you can bring all protein, food and so many things and stick it in the mouth. It won't digest. You can give artificial resuscitation, breathing, but the body won't be, the lungs may expand, but the body will not process it. So this material body interacts with the material energy and appear, that is the trick of Maya, appears to be materially dependent, but ultimately it's dependent on the soul. And even the body can live without food or even air, if one is a practiced yogi. You can depend upon simply the presence of the yogis, Hare Krishna. They maintain the body just by maintaining the prana. Or sometimes even without air. Dhruva Maharaj, he stopped breathing. Still he was able to maintain life. So that is possible by yogic control. Hare Krishna. Any other question? Or let him ask. Newman.
According to Prabhupada,
if we say according to Prabhupada, that means according to Shastra. Because Prabhupada doesn't, you know, he's not like Rajneesh who sits down and whatever comes in his head, he speaks. He speaks according to Shastra only. Yes, then? There's no such thing as Hindu Dharma. Well, Prabhupada didn't exactly say that. We can't say there's no such thing as Hindu Dharma. But, at least in common usage, we say Hindu Dharma. But actually the term Dharma means that which is of the intrinsic nature of the soul. So if you say Hindu Dharma, it is a misuse of words. Because it's just, we heard the lecture yesterday, Prabhupada was saying, there's no such thing as Hindu gold. Remember, you heard that yesterday? Yeah, so the gold has its own nature, separate from the designations we may ascribe to them. So we can say Hindu Dharma, but actually it has no real meaning. Because Dharma means that which is of the intrinsic nature of the soul, and the soul is not Hindu or Muslim or whatever. So in common parlance we say Hindu Dharma, but actually to say that is a misunderstanding. Because Dharma means the intrinsic nature of the soul. The intrinsic nature of the soul is not to be a Hindu. The intrinsic nature of the soul is to surrender to Krishna. You want to say something?
Maharaj, like you talked about the samsari ashram. Maharaj, aapne samsari ashram ke baare mein bola. So, kai log jo hai jo aaye baad mein grihast ashram hone ke baad hi Krishna prapt hua hai, samsari ashram to unhone kiya hi nahi. Unke baare mein unka kya hoga?
To jo grihast banne ke baad कृष्ण भक्ति में आते हैं तो आपका क्या प्रश्न कि ब्रह्मचारी बनाना ऐसे संभव नहीं हो,
क्योंकि
ब्रह्मचारी प्रशिक्षण नहीं मिले तो ऐसा है। तो वरिष्ठ गृहस्थ भक्तों से विशेष शिक्षा मिल सकती, तो कैसे गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति करनी है जिसमें इंद्रिया दमन करना की आवश्यकता है, और गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होने चाहिए। ब्रह्मचारी की यदि ब्रह्मचारी अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञास। तो मेरी एक पुस्तक है कृष्ण भावना में ब्रह्मचार्य, तो बहुत गृहस्थ का मुझको बताया कि उससे बहुत अच्छी शिक्षा मिली, और एक्चुअली गृहस्थ भक्त उसका क्या बोलते हैं सत्यत्व, वो रियालिटी क्या बोलते हैं सत्यत्व वास्तविकता वो ज्यादा समझते, वो ब्रह्मचार्य थे ज्यादा नहीं समझते, सोचते ऐसा दोनों, लेकिन गृहस्थ बनने के बाद समझते कि शास्त्र में वो सब कुछ लेके कि गृहस्थ जीवन में बहुत प्रकार के तकलीफ होते हैं, तो गृहस्थ बनने के बाद बोलते हो शास्त्र में जो बोलते हैं वो सही है, तो पहले नहीं समझते। तो जो देखने से समझते हैं तो ब्रह्मचारी रह सकते, और जो देखने से ही सोचते हैं कि गृहस्थ जीवन में तो थोड़ा तकलीफ हो सकते है और ज्यादा आनंद होगा, तो ब्रह्मचारी तो नहीं रहेगा। तो अनुभव करने से समझ लेंगे, तो शास्त्र में वो सब लेख जो है गृहस्थ जीवन के दौरान गृहस्थ जीवन में बहुत प्रकार के तकलीफ है। हरे कृष्ण।